इनके गणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान रुचन सार का ज्ञान गिरी विभाग अधिकार चल रहा है। अभी आपको वीरेन्द्र कुमार जी बता रहे थे कर्म के बंध की प्रक्रिया कैसे होती है, उदय कैसे में आते हैं, कैसे फल देते हैं, हमारे सुख दुख में कैसे निमित्त बनते हैं। ये बहुत मार्मिक प्रकरण है और उसे हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। सुविधा की दृष्टि से हमें ऐसा लगे कि कुछ थोड़ा उसमें से राहत महसूस हो, इसलिए मैं थोड़ी बात करता हूं कि ये जो हमारे आठ कर्म हमसे बनते हैं ना, ज्ञानावरण आदि, इन आठ कर्मों में सात कर्म तो निपुते ही मरते हैं। समझ में आया क्या कहा? इनके संतान नहीं होती। इन कर्मों के उदय से कोई कर्म नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से थोड़ा ज्ञान कम होगा, नहीं होगा, पर उसकी वजह से कोई कर्म नहीं बन सका जिसे भविष्य में आपको भोगना पड़े। ऐसी दशना बननी, ऐसी बेदनी और अंतराल भी ऐसे ही, नाम कर्म, गोत्र कर्म ये भी ऐसे ही हैं। सिर्फ एक मोहिनी कर्म है तो सात तो अपने आप मर जाएंगे जब उदय में आएंगे, और जो फल उनको देना होगा वो देंगे और खत्म। भविष्य में कर्म की श्रृंखला उनसे नहीं होती, उनमें भी थोड़ा बंटवारा है। ये जो हमारे बाहर के संयोग हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर मकान, ये सब अघातिया कर्मों के उदय से मिलते हैं। ये बाहर के संयोग जिन्हें हम असदूत व्यवहार कहते हैं, वो सभी अघातिया कर्मों के उदय से मिलते हैं। और अघातिया कर्म तो आप जानते हैं अरहंत भगवान के भी होते हैं, और उनके बारे में नाश करने का या फेरफार करने का प्रयत्न अरहंत भगवान भी नहीं करते। जब उनका काल आ जाता है, पकता है, उदय में आते हैं और फिर जाते हैं और जी मोक्ष में चला जाता है। अनंत वीर के धनी हैं, और जो सबसे सड़े सड़ा कर्म है अघातिया कर्म, इनमें कोई ताकत नहीं जाना, लेकिन वे इनको नाश करने के लिए रंच मात्र भी पुरुषार्थ नहीं करते। करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा ध्यान सिर्फ उन आघातिया कर्मों की तरफ नहीं है। साता वेदनी से लौकिक अनुकूलताएं मिलती हैं, असाता वेदनी से प्रतिकूलताएं मिलती हैं। बस हमें साता असाता साता असाता अनुकूलता मिले प्रतिकूलता नहीं मिले, हम दिन रात इसी में चक्कर में रहते हैं, इसी में फेरफार करना चाहते हैं, माने हम वेदनी कर्म में फेरफार करना चाहते हैं। अब वो तो अरहंत भगवान भी नहीं करते, वो तो आएगा समय में, उदय में आएगा, हमारा उपयोग उधर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे वैसे ही चल जाएगा। आपके पास ऐसा नहीं होता है कि मुनीम गुमास्ते लोग व्यापार धंधा करते रहते हैं और बहुत मुनाफा घाटा होता रहता है और सेठ जी को पता ही नहीं होता, लाखों रुपया आ जाते हैं और वैसे के वैसे चले जाते हैं, तो ना उन्हें आने का सुख और ना जाने का दुख, जाने भी पता ही नहीं होता। बहुत सा कर्म ऐसे ही आकर के फिरता रहता है। जमीन खरीदी और जाके वहां कभी देखी ही नहीं, और भाव दस गुने हो गए। क्यों? دس گنے بڑھ گئے, ختم ہوئی, کسی گنڈے نے ہڑپ لی, اپنے ہاتھ میں ہی نہیں رہی, چلی گئی. ہوتا رہتا. اب یہ جو چار گھاتیا کرم ہیں, جانا بن, دسنا بن, موہنی اور انترا, ان سے جو بھی ان کے ادھر میں ہوتا ہے وہ سب جیب کا وکار ہوتا ہے, وہ جیب میں ہوتا ہے, یہ جیب میں پھلتے ہیں, وہ سنیوگ میں پھلتے ہیں, خودگل میں نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اور بھی تو سنیوگ ہیں, دوسرے جیووں کا بھی تو سنیوگ ہے, ماں باپ بھی تو سنیوگ میں ہیں. سنیوگ سمجھے نا, سنیوگ میں پھلتے ہیں اگھاتیا کرم, اور گھاتیا کرم جیو کے وکار میں پھلتے ہیں. تو آتما میں وکتی جیسے اپن کہتے ہیں وہ گھاتیا کرموں کے وجہ سے ہوتی ہے. جانا بنی کرم ہے, دشنا بنی کرم ہے, وہ یہ بیدنی ہے, وہ کیا نام انترا کرم ہے. تو ان کے ادے میں جو ہوگا وہ ہو جائے گا, لیکن اس کی وجہ سے بھوشیہ میں کرم نہیں بنے گا. یہ بھی نسنتان ہی مرتے ہیں. اب موہنی کرم میں دو بھید ہیں, ایک درشن موہنی اور ایک چارتر موہنی. تو چارتر موہنی میں جن جن پرکتیوں کا جیسے بند ہوتا ہے, اور درشن موہنی کی وجہ سے جن جن پرکتیوں کا بند ہوتا ہے, وہ سب شاستر میں تتوا سوتر میں بتایا گیا ہے. تو ایک چارتر موہنی درشن موہنی ہی ایسا کرم ہے, اور جس میں بھی تین پرکتیاں ہیں اس میں ایک پرکتی متھیاتو, مانے 148 پرکتیوں میں ایک متھیاتو نامک پرکتی ہی انت سنسار کے بند کا کارن ہے, اور کچھ نہیں ہے. سب اپنے سمے پر نشٹ ہو جانے والے ہیں, ادے میں آئیں گے چلیے. بھوشیہ میں جو بند بھی ہوگا چارتر موہنی کے ادے میں, وہ بالکل ایسے کرموں کا جن کا کوئی خاص اثر ہم پہ نہیں ہے. یہ متھیاتو نامک گنستان سے جیو نکلا نا, تو اس میں 45 پرکتیاں بندھنا بند ہو جاتی ہیں. کوئی 41 کہے گا, گھبرانا نہیں, وہ کسی اپیکشا ہے, جب چاہو گے تو بتا دیں گے. 16 پرکتیاں پہلے گنستان سے نکلتے ہی بند بچھتی ہو جاتی ہیں, 25 پرکتیاں دوسرے گنستان سے پار ہوتے ہی ہو جاتی ہے, 16 اور 25 41, اور پھر 4 پرکتیاں تیسرے گنستان میں بند بچھتی ہو جاتی ہیں. تو یہ 45 ہوگی نا, 41 اور 4 45. پھر وہ جو 41 42 کہتے ہیں, اس میں تیتھنکر پرکتی اور آہارک دکھ بندھنے لگتی ہیں, اس لیے انہیں گھٹا دیتے ہیں, اس لیے 41 بولتے ہیں. گھٹتی تو 45 نریش جی, یہ 45 پرکتیاں میں ایک ایک پرتی اتنی خطرناک ہے جو انت سنسار کا کارن ہے. اس کے سامنے سارے کرم بیکار ہیں. اکیلا متھیاتو نامک پرکتی ہے, وہ انت سنسار کا کارن ہے, اور وہ بندھنا بند ہو گئی تو انت سنسار کا کام تو ختم. معلوم ان کا میں تھوڑا انداز آپ کو لگاؤں, انتان بندی کرودھ مان مایا لو متھیاتو اور ایک اندری, دو اندری, تین اندری, چار اندری, نرک گتی, نرک گتیان پوروی, ترنج گتی, ترنج گتیان پوروی, یہ سب خطرناک پرکتیاں ہیں, یہ سب بندھنا بند ہو جاتی ہیں. اب بچتی کون ہے؟ تیتھنکر پرکتی, دیو گتی. ارے یہ تو ہم چاہتے ہی ہیں, جنہیں ہم چاہتے ہیں وہ بندھنا چالو رہتی ہیں, اور یہ خطرناک پرکتیاں بند ہو جاتی ہیں. تو یدی کرم کے ورودھ ہمیں کوئی لڑائی لڑنی ہے, کارگر لڑائی, تو ہمیں وویک سے تو نرنے کرنا پڑے گا نا. ہمارے شاستروں نے لکھا ہے بندھ کے کارن 5 ہیں, متھیاتو, अविरति प्रमाद कसाय और योग, और इनका एक नियम है कि ये किन्म से ही खत्म होते हैं, पहले मिथ्या तो खत्म होगा, फिर अविरति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कसाय जाएगी, फिर योग जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले हमें कसाय छोड़ दें और बाद में मिथ्या पे जाता रहेगा, ऐसा नहीं, पहले योग ठीक कर लें, ऐसा नहीं, माने पहले मिथ्यात्व का नाश होता है। कैसे वो उन्हीं में बताऊंगा, सोचें खत्म करने के पहले बता दूंगा, घबराना नहीं, समझे ना, मिथ्यात्व प्रकृति। और ये हम क्या शुरू करते हैं, लोग कहते हैं योगा करो, योगा योगा करिए। अब जो योग अरहंत भगवान के सबसे ज्यादा चलता है, शास्त्र में लिखा है अरहंत भगवान का उपयोग अपन से कई गुना चंचल है, वो अरहंत भगवान उस योग को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते, अनंत वीर के धनी हैं, हम योगा को ठीक करेंगे, पीड़ की हड्डी को सीधी करेंगे, योगा से शुरू करते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर है, नवोकार मंत्र नहीं जानते हैं और योगा में जाते हैं और योगा करते हैं, थोड़ा मैं भी सीख लूंगी। शास्त्र क्या कहते हैं देखो तो, कि वो उसके बाद उसको फिर कहते कसाय छोड़ो। अब मानू कसाय चौथे नंबर पे छूटती है, सबसे पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर अवरति छूटती है, फिर प्रमाद छूटता है, फिर कसाय छूटती है, फिर योग ठीक होता है। हम योगा से शुरू करते हैं और फिर देख गुस्सा कम किया करे, कसाय कम किया करे, बस कसाय कम करने का उपदेश देते हैं। मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए, ये कोई बात ही नहीं करता, वो भी कोई धर्म है, वो भी कोई करने लायक चीज है, इसके बारे में हम सोचते हैं। कुछ गुरुदेव श्री थे जिनने डंके की चोट ये कहा कि मिथ्यात्व बंद का कारण है, और समाज में इतनी खलबली मच गई कि बड़े बड़े लोगों को ये चिंता करनी पड़ी कि उन्हें कहना पड़ा कि मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है। इस झगड़े में मैं ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाहता हूं, ये अकिंचित कर क्या होता है, अकिंचित कर का मतलब होता है कुछ भी नहीं कर सकता, किंचित कर माने थोड़ा कर सकता, और अकिंचित कर कि वो थोड़ा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मिथ्यात्व तो कुछ नहीं कर सकता। अरे सारा बंध मिथ्यात्व तो ही करता है, अनंत काल से संसार में हम मिथ्यात्व के कारण हैं, मिथ्यात्व सबसे पहले छोड़ना चाहिए हैं। मिथ्यात्व जब छूटेगा छूट जाएगा, तो अरे व्रत ले लो। शास्त्र कहते हैं मिथ्यात्व छूटे बिना व्रत छूटते ही नहीं, होते ही नहीं है। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, लिखा क्या नहीं लिखा, तो मिथ्यात्व नामक जो कर्म है, तो अभी वो जो सत्ता में है, अब आचार्य कहते हैं कि वो तो खतरनाक है ना, कहते घबराओ, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कुडबी पिंड समाना, समय सार में लिखा है, ये समय सार की गाथा की पंक्ति में बोल रहा हूं क्या, कुडबी पिंड समाना, पृथ्वी के ढेले के समान है, ये मिट्टी का ढेला होता है ना, जो बाजार में ऐसा पड़ा रहता है जंगल में, ऐसा मिट्टी का ढेला है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी है पृथ्वी के ढेले के समान, जैसा पृथ्वी का ढेला पड़ा हो और वो कुछ नहीं करता है, ऐसे ही इस सत्ता में पड़ा हुआ मिथ्यात्व कर्म कुछ भी फल तुम्हें नहीं दे सकता, कर्म नहीं बनता उसे। उदय में आया तो एक समय के लिए उदय में आता है, तो वो एक समय जितना भी समय समझ लो, उदय में आया उतना फल देगा, और उदय में आया हुआ कर्म एक क्षण बाद ही फिर मिट्टी के ढेले जैसा हो जाता। तो उदय में आया, वो निमित्त बना, वो काम हुआ, और अब बाद में वो कुछ नहीं है। बस बाद में कुछ नहीं है, पहले कुछ नहीं है, जिसके डर के मारे हम इतने घबरा रहे। पर एक सेकंड को आएगा उदय में, उदय समय समय एक समय को आएगा उदय में, उस वक्त वो फल जो भी आएगा देगा तो क्या होगा कि वो जो क्या फल देगा मालूम आपको, बस आपका अंदर में मिथ्या नाम का परिणाम हो जाएगा। अथो अनादिकाल से है ही मिथ्यात्व नाम का परिणाम, तो उस वक्त के उस मिथ्यात्व नाम के परिणाम का वो निमित्त हो जाएगा। बस आने पीछे फिर बेकार, आगे दीजिए फिर। तो ये कह रहे हैं कि ये जीव का जो मिथ्यात्व नामक भाव है, ये मूलतः उन खतरनाक प्रकृतियों के बंध का कारण है। तो अभी इसका नाश कैसे करें मिथ्यात्व नामक कर्म के, हमको जो वो विधि चाहिए, यानी कर्म के विरुद्ध जो लड़ाई शुरू करनी है वो कहां से शुरू करना चाहिए, योगा से नहीं। ख्याल में आई ना, कसार से भी नहीं, कसार का मंद और तीव्र हृदय तो आता रहता, घबराना नहीं, ये नियम है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा ना कसार मंद रहती है ना तीव्र रहती है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया में कम ज्यादा होती रहती है। आपको गुस्सा आ रहा ना ज्ञान से नहीं, तो धीरे धीरे अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा, फिर तेल हो जाएगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर तेल हो जाएगा, ये ठंडा तेज ठंडा तेज, नरम गरम नरम गरम होता ही रहेगा। कब तक? जब तक वो मिथ्यात्व नामक कर्म नहीं गया है तब। और उसमें जो कर्म की सत्ता पड़ी है वो उदय आती रहेगी, अनिमित्त होती रहेगी। उस निमित्त के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, ना लाने के लिए कुछ करना है, ना रोकने के लिए कुछ करना नहीं है, उसके बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं है। कहां लिखा वीरेंद्र मोक्ष अधिकार में शुरू शुरू की गाथाएं हैं, उसमें लिखा है कि बंध के ज्ञान से, बंध की चर्चा से बंध का नाश नहीं होता, बंध का अभाव नहीं होता। कर्म बंध की चर्चा करो, कर्म बंध का विचार करो, कर्म बंध के बारे में सोचो, पढ़ो लिखो, समझाओ समझाओ, तो उससे क्या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा लिखो। और अमृत चंद्र ने तो इतनी खतरनाक बात लिखी, क्या लिखी मानो, कि ऐसा कहकर कुंद कुंद आचार्य विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध हुई है उनका निषेध करते हैं, कैसा लगा? क्या समझे? विपाक विचय नाम के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की तो बात ही नहीं है, ये ध्यान वाले तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की बात भी नहीं बताते हैं, जो ध्यान सर्वथा छोड़ने योग्य हैं, जो करने योग्य नहीं है, जो नरक के कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, आप ध्यान तिरंज गति का कारण है। अब ये धर्म ध्यान, वो धर्म ध्यान का एक भेद है, उसका नाम क्या है? विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। ये विपाक विचय क्या है? कर्म का उदय माने विपाक माने कर्म पक्ता कैसे है। आम पक्ता है ना, तो कर्म का भी काल आता है, पकता है, उदय का काल आना उसको पकना बोलते हैं, वो विपाक हुआ। तो उसके बारे में जो भेद प्रभेद शास्त्रों में बताए हैं बहुत विस्तार से, कौन सी प्रकृति कैसे बनती है, कब बनती है, उसमें कौन निमित्त होता है, ये सारा विस्तार से बहुत वर्णन करुणान योग में मिला है। तो वो कहते हैं विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध हो गई है, जो अंधे हो गए उसको अंध बुद्धि कहते हैं। ये योगा वाले का क्या होगा, ये कमर सीधी करने वाले का क्या होगा, جنگل میں. تیرے حساب سے تو کچھ ہوتا نہیں, تھوڑا جو کرم ہدے میں آوے تو کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ہم سے مدہ کر دیں. جیسے ہم بجلی میں ایسا دبا دیتے ہیں تو کم تیز ہو جاتی ہے, مدی ہو جاتی ہے. آج کل ایسے سوچ آ گئے نا, ایسا ہم کچھ کرم کے ادے میں ایسا کچھ کر سکتے ہیں, بند میں کر سکتے ہیں, کچھ نہیں, کہیں کچھ نہیں. تیرے جان کے ہی گئے نہیں بنتے ہیں, اتنت سوکشم ہیں. اور ویسے ہی پورے جانے پردرب ہیں, فرد ایک درب دوسرے درب کا کرتا ہی نہیں ہے, ہے نا. تو ادھر کا تیرے کو دھیان کر کے ضرورت ہی نہیں ہے وپاک بچے نام کا دھرم دھیان. آپ جانتے ہیں یہ جو سارا کرنانی یوگ وپاک بچے دھرم دھیان میں آتا ہے, اور سارا چرنانی یوگ آجیا بچے نام کی دھرم دھیان میں آتا ہے. آجیا بچے مانے بھگوان کی آجیا کیا ہے, بھگوان آجیا دیتے ہیں, ہاں دیتے ہیں نا. آلو مت کھاؤ, اس میں انت جیو ہوتے ہیں, اسے بھگوان کی آجیا بولتے ہیں. یعنی ان نے بتائے ہیں کتنے کتنے جیو کہاں ہوتے ہیں, اور ان کے سیون کرنے سے ان کا گھات ہوتا ہے. تو ہمارے سادھو ہمارے گرست اس کے آچرن انسار اپنا آچرن پالتے ہیں, تو اس کا جو ادھین کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں پہلا کون آجیا وچے نامک دھرم دھیان. پھر وپاک وچے نام کا بتا ہی دیا کون سی کرم کی بگڑی کب بنتی ہے, کب ادے میں آتی, کب ستا میں رہتی ہے, یہ سب باتیں. اور پھر وپاک وچے پھر سنستان وچے لوک کا آکار کیسا ہے, تین لوک کی نقشہ مقشہ سب بنا دیتے ہیں, اس کا وچار کرو. اور چوتھا اپائے وچے مکتی کا مارگ کیا ہے, سمدر میں گیان چارتر مکتی کا مارگ ہے, متھیا درشن متھیا گیان متھیا چارتر مکتی کا مارگ نہیں ہے, اس کا چنتن کرو. یہ اپائے وچے نام کا دھرم دھیان ہے. تو یہ چاروں دھرم دھیان اس جناگم میں آ گئے, یہ شاستر میں ہی آ گئے. ہم یہ جو شاستر سوادھیائے کر رہے ہیں یہ بھی ہم دھرم دھیان کر رہے ہیں. دھرم دھیان ہی نہیں کر رہے ہیں, تپ کر رہے ہیں. کہاں لکھا تتوا سوتر میں بانچنا پرکشنا انوپریکشا آمنا دھرموپدیشا, شاستر کا پڑھنا, یہ کیا ہے سوادھیائے کا پہلا نمبر بھید. پھر پرچھنا سمجھ میں نہیں آئے تو کسی سے پوچھنا, یہ دوسرا نام کا سوادھیائے ہے. اور پھر انوپریکشا مانے سوچنا, یہ تیسرا سوادھیائے ہے. پھر گھوکنا مانے بار بار ریپیٹ کرنا, یہ پاٹھ نام کا سوادھیائے ہے. اور پھر پروچن کرنا, یہ پانچواں دھرموپدیش نام کا سوادھیائے. یہ بھی میں پروچن کر رہا ہوں بن جی, تو میں تپ کر رہا ہوں لگتا آپ کو. آپ مجھے تپسوی ماننے کو تیار ہو, یعنی تین دن کے وہ باس کر دوں تو مان لو گے. تو شریر کو تم تو شریر کو بھوکے رکھنے کو مانتے ہو, یہ شاستر کی بات ہے نا. اب سمے شاستر سے بڑا تو کوئی شاستر ہے نہیں, پروچن شاستر سے بڑا کوئی شاستر ہے نہیں. اب وہ شاستر میں آپ کو کند کند کی وانی سنا رہا ہوں, اس لیے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دو نمبر کا سوادھیائے ہے. کیوں اس سے بڑھیا تو کوئی دوسرا ہوگا نہیں. اور آپ جو سن رہے ہیں نا, یہ بانچنا نام کا سوادھیائے میں ہے. سننا پڑھنا پڑھانا, اور پھر بیچ میں ایک پرشن پوچھ لیا تو وہ پرچھنا نام کا سوادھیائے ہے. اور کل میں بھول نہیں جاؤں اس بات کو تو نوٹ کر لیا, یاد کر لیا, وہ آمنا نام کا سوادھیائے ہے. تو دوسرے کو سمجھانا وہ دھرموپدیش نام کا, یہ تپ ہے بھائی صاحب. اسے کوئی تپ ہی نہیں مانتا. کیا کرنا, وہ کرم کا ابھاو کرنا ہے, اس کرم سے بچنا ہے. تو کرم جا کر سائیکل چلانی ہے سڑک پر تو سائیکل کی طرف دیکھنا نہیں, نہ پہیے کی طرف دیکھنا, نہ ہینڈل کی طرف دیکھنا, کہاں دیکھنا سامنے سڑک پہ دیکھنا سمجھ جائے نہیں 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 تھوڑی پریکٹس تو ہونی چاہیے تھوڑی پریکٹس تو ہونی چاہیے بعد میں پھر ایسا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے پریکٹس تو جیو کو انادی سے ہے ہر بات کی کوئی بھی کام بنا پریکٹس کے بنا دھیان کے تو ہوتا ہی نہیں ہے دھیان کرنے کا سب اپیوگ کی ایکاگرتا اس کا نام اصلی دھیان ہے ایکاگرتا تو ایک مانے کہیں ایک جگہ تو دھیان ہو گیا میرا رومال پہ لگ گیا اور دوسرا ارتھ ہے ایک مانے اپنا بھگوان آتما تو ایکاگر مانے اپنے آتما کی طرف دیکھنا ایک ابھرنش کا ودوان ہوا ہے بہت بڑا اجینی ودوان اس کا نام تھا نامبر سنگھ جن نے ہندی ایم اے پڑھا ہوگا ہندی میں پی ایچ ڈی کی ہوگی وہ لوگ جانتے ہوں گے نام سنا ہوگا نامبر سنگھ کوئی ایک آدھ آدمی تو ہاتھ اٹھاؤ گواہ تو ملے دیکھو ایک آیا تو اٹھا پیچھے نامبر سنگھ اس نے معلوم کیا لکھا کہ جین ساہتیہ میں جہاں ایک شبد آوے تو اس کا ارتھ آنکھ بیچ کے آتما کر دینا ایک مانے آتما جان دیا کا مانے ہوتے ہاتھ پرتھوی کھا مانے ہوتا ہے آکاش گا مانے ہوتا ہے جنوانی اور گھا مانے ہوتا ہے آتما جانتے تھے ایک لفظ اور بتاتا ہوں یاد کر لینا کیا کامان پرتھوی کھامان آکاش گامان سرسوتی اور گھامان آتما ٹھیک ہے اب اپنے آتا اگ اگ مانے کیا ہوتا ہے پاپ اور کسی کو اور کوئی دوسرا بتانا ہے اگمانے پاپ نہیں ہوتا ہے پاپ تو ہوتا ہے لیکن پاپ ہی نہیں ہوتا ہے اگمانے پن پاپ دونوں ہوتے ہیں دیکھ لینا ستیش بھائی اگمانے اکیلا پاپ نہیں ہوتا ہے پن پاپ دونوں ہوتے ہیں کیوں کیونکہ گھامانے آتما اور آمانے آتما سے الگ ہوا تو پن پاپ میں گیا نا ویتراگ بھاو سے ہٹ کے تو وہ ہو گیا اگ اگ مانے گھا مانے آتما اور آتما میں نہیں جانا اس کا نام ہے اگ ہو گیا نا پن پاپ دونوں کا میں نے اپنے ودھانوں میں پریوگ کیا ہے خوب اس کا اگ شبد کا پریوگ وہ پن پاپ کے ابھاو میں لکھا ہے دوہا میں اگ مانے پن پاپ کا ابھاو اور میں نے دیکھا ہے شاستر میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں آگم کے آدھار سے بول رہا ہوں تو یہ جو بول رہے ہیں کہ اپنے آتما میں چھاتوں کا ناش کرنا ہے نا تو اس کے ناش کرنے کے لیے نہ تو یوگا کی ضرورت ہے یوگا بعد میں ہوتا ہے نہ کسائے کے چھوڑنے کی ضرورت گھبرانا نہیں کسائے کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں کیسی بات کرتے ہو ارے موکھ جانے کے لیے ضرورت ہے متھیاتو کا ناش کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے سمجھ میں آیا نا تو کیا ہے اس کو تو متھیاتو چھوڑنے کی ضرورت ہے تو متھیاتو کیسے چھوٹتا ہے متھیاتو کیا ہے وہ سمیک کیا ہے بہت پریبھاشائیں آپ نے سنی ہوں گی لیکن میں اتنت سرل پریبھاشا کر بتاتا ہوں اور ابھی یہیں یاد کرا دوں گا سب کو یاد ہو جائے گی جو بالکل تھرڈ ڈویژن ہوگا فیل ہوگا اس کو بھی یاد ہو جائے گی کیوں فرسٹ کلاس نہیں چاہیے ہم کو اپنے میں اپناپن اس کا نام سمیک درشن और अपने आत्मा को छोड़कर त्रिकाली ध्रुव को जितने भी पदार्थ हैं उससे भिन्न, उन सब में अपनापन इसका नाम मिथ्या। इतना कितनी सरल है, सारी दुनिया को दो भागों में बांटा, एक स्वा और एक पर। स्वा में अपनापन हुआ तो संबंध सम हो गया। ऐसा नहीं कि जो दो नंबर का होगा, एक नंबर का ही एक नंबर होता हो ना, वो है। स्वानुभूति संबंध दर्शन नहीं है, घबराना नहीं। स्वानुभूति में तो अनंत गुणों की पर्याय शामिल है, संबंध दर्शन तो अकेले श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है उसके भौतिक। तो क्यों कहा शास्त्र में, क्योंकि स्वानुभूति के काल में संबंध दर्शन पैदा होता है। इसलिए वो त्रिकाली ध्रुव में जो अपनापन होता है वो स्वानुभूति के काल में सबसे पहले होता है। आप समझ रहे ना, इसलिए कहा है। लेकिन वो फिर क्या, स्वानुभूति तो चली गई और अपना उपयोग बाहर आ गया, लड़ाई में लग गया, झगड़े में लग गया, खाने पीने में लग गया, धंधा पानी में लग गया, और संबंध दर्शन कायम है कि नहीं है, तो क्या कायम है? कोई उस चीज का नाम संबंध दर्शन होना चाहिए कि अंदर में आत्मानुभूति की थी तो उपयोग अंदर में था, उपयोग बाहर चला गया, फिर भी वो संबंध दर्शन कायम है। इसका मतलब संबंध दर्शन के लिए उपयोग का अंदर रहना जरूरी नहीं है, रहने के लिए, उत्पन्न होने के लिए जरूरी है। नहीं आया समझ में? सरल करूं, ब्रह्मचारियों के बाल बच्चे हो सकते हैं, बोलो सोचो, नहीं हो सकते पक्की? तो मैं कई ब्रह्मचारियों के नाम बता दूं जिनके बाल बच्चे हैं। अरे पहले ब्रह्मचारी नहीं थे, तब बाल बच्चे हो गए, फिर बाद में उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, तो वे ब्रह्मचारी हैं कि नहीं है? और वे उनके बच्चे स्कूल में नाम लिखाने जाएंगे तो बाप के नाम का उनका नाम लिखाएंगे कि नहीं? वे कह देंगे मेरा बच्चा नहीं है। तो ब्रह्मचारियों के बाल बच्चे वो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जैन धर्म का अनेक अंत है। ऐसे हो सकते हैं जैसे मैंने बताए, और नए पैदा नहीं हो सकते। तो सम्यक दर्शन अनुभूति के बिना हो सकता है कि नहीं? कि पैदा नहीं हो सकता लेकिन रह सकता है। युद्ध के काल में भी सम्यक दर्शन रहता है ना, भोग के काल में भी सम्यक दर्शन रहता है कि नहीं? भरत चक्रवर्ती जब लड़ाई लड़ने गए थे तो सम्यक दृष्टि थे नहीं, शारीरिक सम्यक दृष्टि। तो क्या रहता है मालूम आपको? वो जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो ज्ञान का गेय रहता है बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, और उसमें अपनापन कायम रहता है। ये संबंध दर्शन कायम है। एक आदमी अपने गांव से कलकत्ता घूमने गया, अरबपति आदमी था, कोई कमी नहीं थी पैसों की, नौकरों की, चाकरों की, सब। अब वहां गया तो सारा सामान, टिकट सब एकदम चोरी चला गया, हाथ में कुछ नहीं रहा। तो अपने थैला भी हाथ में नहीं रखते हैं, क्योंकि जितने बड़े आदमी उतने ही सुकुमार। तो सब गया, कुछ नहीं बचा। अब वो किसी के पास गया बाजार में, और उसने कहा 10,000 रुपये दे दो मुझे, मैं घर जाते ही भेज दूंगा, डबल भेज दूंगा, 20,000 भेज दूंगा बस। क्यों? तो वो सामने वाला गए, ऐसे बहुत आते कईयों को दिए थे, आज एक ने भी नहीं दे दिए। तुम तो बोलो, तुम्हें चाहिए हो तो मैं दे सकता हूं, लेकिन वापस भेज दूंगा अली, बात मत करो। क्या बात करते हो, मैं भेज दूंगा। वो जी मानता है और अकड़ता। वो कहता है मानता है और अकड़ता है। कहां है, उसने मांगना तो अभी तत्काल की आवश्यकता है, नहीं तो घर नहीं पहुंचेगा, टिकट लेने के चाहिए नहीं, इसलिए मांगता तो इसलिए है। और अकड़ता किस लिए है, जो घर पर भी अरबों रखे हैं ना उसकी अकड़ अभी ईड़ की हड्डी में है, वे पैसे तो पास में नहीं है, हजारों मील दूर हैं, लेकिन उनकी अकड़ रह सकती है ना। ऐसे ही उपयोग में आत्मा नहीं है उस समय दृष्टि के, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में उसकी अकड़ है, उसका अपनापन है। मैं ज्ञानी संबंधित नहीं जानते हूं, वो जो अपनापन कायम रहता है वो समना दर्शन है। और उसे छोड़कर और दुनिया में किसी भी पदार्थ के प्रति, जब हमारा माँ हो, बाप हो, भाई हो, कितने नजदीक हो, जिनेन्द्र भगवान हो, अरंध भगवान हो, सिद्ध भगवान हो, किसी के प्रति रंच मात्र भी अपनापन होगा तो वो उतना ही बड़ा मिथ्यात्व होगा जितना किसी ऐरे गहरे नत्थु में अपनापन होगा तो मिथ्यात्व होगा। समझिए, वो छोटा मिथ्यात्व तो नहीं होगा। अरंध भगवान तो अपने ही है, नहीं अपने नहीं, वो पर पदार्थ हैं भाई साहब, बिल्कुल पर द्रव्य हैं। कहने के लिए जो कुछ कहना हो कह लो, लेकिन वास्तव में वो स्वद्रव्य नहीं है, पर द्रव्य है। तो स्वद्रव्य में जो अपनापन कायम है उसका नाम है समना दर्शन कायम है। अब वो जो चीज कायम है वो कितना बड़ा काम कर रही है, भविष्य में मिथ्यात्व को नहीं बनने दे रही, अनंतानबंदी को नहीं बनने दे रही, प्रत्याख्यान उसको नहीं बनने दे रही, वो एक इंद्री दो इंद्री पर्याय को नहीं बनने दे रही, नरक गति को नहीं बनने दे रही, नरक गत्यान पूर्वी को नहीं बनने दे रही, त्रंज गति को नहीं बनने दे रही, त्रंज गत्यान पूर्वी को नहीं बनने दे रही, और औरत स्त्री वेद को नहीं बनने दे रही, नपुंसक वेद को नहीं बनने दे रही। वो उतना सा बैठा है अंदर, वो इतना काम कर रहा है क्यों साहब? ये जो बात मैं कह रहा हूं वो शास्त्र के अनुसार है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। इसमें कुछ गड़बड़ है। और तुम योगा लगा के बैठे हो, बिल्कुल उपयोग बाहर भी नहीं जाता, एकदम ऐसा बैठे हुआ है, और सारी प्रकृतियां बन रही, मिथ्यात् बन रहा है, सब नंदानबंदी क्रोधमान माया लोग बन रहे। बोलो पहले ये तो बंद तो करो, ये बंद नहीं करोगे तो ऐसे कुछ नहीं होगा हाथ पे हाथ रखने से। ये किरम है अनंतानबंदी के साथ, जब तक नहीं छूटेगी तब तक अप्रत्याख्यान नहीं छूट सकती है। एक आदमी था, नाम नहीं कहता हूं, मैंने जेंडर भी बदल दिया है जिसमें लोगों को बैठ नहीं सकनी हो, आदमी नहीं था, आदमिन थी। तो जो ऐसा कहती थी कि भाई मिथ्यात्व कर्म का क्षय नहीं हुआ, अनंतानबंदी नहीं गई और अप्रत्याख्यान चली गई तो व्यर्थ हो जाएगी, मिथ्या दृष्टि को व्रत कैसे हो जाते हैं? जैसे समय दर्शन नहीं है और फिर उसने व्रत ले ली, प्रतिमा प्रतिमा ले ली, तो वो कहता है कैसे चले गए? तो प्रतिमाओं को तो अप्रत्या खाना वर्ण कैसा रोकती है, उनकी अप्रत्या खाना वर्ण चली गई और अनंतानबंदी नहीं गई और मिथ्या तो नहीं गया। मैंने कहा बहन जी ऐसा नहीं होता है, पहले जाती है अनंतानबंदी फिर जाती है अप्रत्याख्याना वर्ण, ऐसा नहीं होता कि नारियल में से पहले छिलका निकाले बिना खोपड़ी नहीं खोली जा सकती, खोपड़ी खोले बिना वो लालिमा नहीं निकाली जा सकती, और लालिमा निकाले बिना सफेद गोला हाथ नहीं आएगा, उसके निकालने का एक क्रम है। तो छिलका निकालना तो बहुत कठिन है, खोपड़ा खोलना तो बहुत कठिन है। अरे कठिन मठिन नहीं है, कठिन तो वो है, कौन वो लाल लाल निकालना, क्यों है कठिन वो? क्योंकि पहले छिलका निकलेगा तब निकलेंगे ना, उसके साथ अकेला कोई भी निकालना है, साथ में ये भी तो निकालना है ना, ये मिथ्यात्व को निकालना तो बहुत आसान है। کیوں ہے آسان؟ اس نے بتا دیا کہ سمے ہو گیا تمہارا. بہت مارمک وشے ہے نا, اس لیے بند کرنا مجھے بہت بھاری پڑ رہا ہے. رکوں تو